اب فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ تعالیٰ ایک دو گروہوں میں سے, اَنَّهَا لَكُمْ, کہ بے شک وہ تمہارے لیے, تم ایک گروہ کو تو فتح کر لو گے, چاہے قافلے کے پیچھے جاؤ گے وہ تمہیں مل جائے گا, اگر لشکر کے پیچھے جاؤ گے اور اس کے ساتھ جنگ کرو گے تو اس میں جیت جاؤ. وَتَبَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور تمہیں کیا دل چاہتا تھا کہ وہ جس میں کانٹا بھی نہ چھپے وہ ہمیں مل جائے, وہ جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے, جن کے ساتھ اتنی, کہ جب ایک ملنا ہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے لڑیں. اس میں فائدہ بھی زیادہ نظر آ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ ہے, لیکن دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہوتی ہے نا ہوتا وہی ہے, اور یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ, اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر کے دکھا دے, کیونکہ اسلام کا تو مقصد یہ ہے کہ حق سامنے آ جائے اور باطل بھی سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کلمہ حق بلند ہو, اور یہ قافلہ لوٹ لینے سے نہیں حاصل ہونا تھا. تو اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کاٹ دے جڑ کافروں کی. جب آپ کو پتہ ہے انسان بعض دفعہ مشقت سے بچنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ بس وقتی تھوڑا سا فائدہ مل جائے, یہ تھوڑی سی چیز مجھے مل جائے, یہ مل جائے گی تو بس میرے لیے اتنا کافی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم سارے چاہتے ہیں چلو جنت میں چھوٹا سا ہی مکان مل جائے, بس ایک داخلہ ہی مل جائے, بس سب سے نیچے بے شک درجہ مل جائے. تو وہ بھی چاہتے تھے کہ ایک قافلہ بس ٹھیک ہے, اس میں سے ہمیں سامان وغیرہ مل جائے گا, کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ لڑنے کی, کوئی قتل ہوگا کوئی یہ ہوگا اور ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے. ظاہر ہے ایک انسان کو جنگ سے آتا تو ہے نا دل کے اندر ایک خوف. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, اس سے بڑا فائدہ ان کو دینا چاہتا ہے. آج تک بدر کو یاد کیا جاتا ہے یوم فرقان کی نام سے, فرق کر دینے والی حق اور باطل میں. یہ وہ جنگ تھی جس نے عرب میں دھاک بٹھا دی تھی مسلمانوں کی, ایک مسلمان بھی ایک قوت ہے ایک طاقت ہے. یہ وہ جنگ تھی جس میں کافروں کی ٹاپ جو تھی نا, ان کی جو کریم کہہ دیں, ان کا جو ٹاپ تھا اس کا صفایا ہو گیا, جس میں سب سے بڑا تو ان کا جو سردار ابو جہل تھا, کیسے اس کا خاتمہ ہوا. اور اس کی وجہ سے دیکھیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ میری امت کا ابو جہل فرعون ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے نا, اس طرح میری امت کا فرعون ابو جہل. اور عتبہ, شیبہ, عاص بن حشام, امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا ہوا کرتا تھا, جس نے ان کو کتنا ان کے اوپر ظلم کیا تھا, اس طرح کے بڑے بڑے سردار سارے مارے گئے. امیہ بن خلف کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف جو اسے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ مکہ میں میرے مال و دولت کی حفاظت کرے, میں مدینہ میں اس کے مال کی حفاظت کروں, یعنی ایک آپس کے اندر میوچل ان کی ایک کانٹریکٹ تھا. تو بدر کے دن میں پہاڑ پہ پہنچا تاکہ اس کو قتل ہونے سے بچا سکوں, تو بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور وہ انہوں نے انصار سے کہا, انصار وہ ہے امیہ بن خلف, اگر آج امیہ بچ گیا نا تو میں نہیں بچوں گا. یعنی انسان کہتا ہے نا یا تو آج یہ رہے گا یا میں رہوں گا. تو انہوں نے ایک انصار کی جماعت کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا پیچھا کیا, جب مجھے یہ خوف ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے تو میں نے امیہ کا بیٹا ان کے سامنے کر دیا تاکہ وہ اس کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں, انہوں نے اس کو قتل کر, پھر انہوں نے ہمارا پیچھا کیا. ابھی عبد الرحمن بن عوف اس لیے اس کے ساتھ اس کو لے کر بھاگ رہے ہیں کیونکہ یعنی ایک طرح سے ان کا ایک کانٹریکٹ تھا ان کے ساتھ. امیہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا, موٹا تازہ تھا, تو جب وہ بھاگتا تھا تو اتنی تیز نہیں بھاگ سکتا تھا. اب وہ مسلمان پہنچ گئے, حضرت بلال پہنچ گئے, تو عبد الرحمن بن عوف نے امیہ سے کہا کہ تم نیچے لیٹ جا اور اب خود اپنے آپ کو اس کے اوپر لٹا دیا تاکہ وہ اس کو مار نہ سکے. وہ کہتے ہیں انہوں نے میرے نیچے سے اس کو تلواریں مار مار کے قتل کر دیا. اور اسی طرح ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا, عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ बदर के दिन जब मैं खड़ा हुआ था, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी अभी, यानी सफों में खड़े हैं, तो कहते हैं मैंने अपने दाएं बाएं तरफ देखा तो दो कम से नौजवान खड़े थे, ज्यादा एज के नहीं थे, यंग लड़के थे। इस वक्त मेरा दिल करा कि हाय काश मेरे साथ कोई ताकतवर लोग होते, यानी आपके राइट एंड लेफ्ट पे हो ना, तो इंसान को अच्छा फील होता है कि मेरे साथ हैं, तो ये क्या छोटे छोटे लड़के खड़े हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि क्या आप अबू जहल को जानते हैं, क्योंकि ये मदीना के थे लड़के, इनको तो अबू जहल की पहचान नहीं थी। तो मैंने कहा हाँ मैं पहचानता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम। तो उन्होंने कहा हमें पता चला है कि वो हमारे नबी को गालियां देते हैं, तो कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो मेरा जिस्म उसके जिस्म से उस वक्त तक अलग नहीं होगा जबकि वो मर ना जाए, या तो उसकी मौत है या मेरी मौत पहले आ जाए। देखिए सुभान अल्लाह कितनी उनको मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे नबी को बस सताता है, हमने आज उसको नहीं छोड़ना। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई उसकी बात, ये कहते हैं दूसरा जो था मेरे दूसरी तरफ खड़ा था उसने भी मेरे से यही पूछा कि आपको अबू जहल का पता है। तो कहते हैं उसने भी यही बात की कि मैंने उसको आज नहीं छोड़ा, वो हमारे नबी को सताता है। तो कहते हैं अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैंने देखा अबू जहल लोगों के दरमियान फिर रहा, तो मैंने कहा वो है जिसके बारे में तुम मेरे से पूछ रहे। तो कहते हैं वो ऐसे निकले जैसे बाज झपटता है ना अपने शिकार पे, इस तरह वो गोली की तरह निकले और जाके उस पर हमला कर दिया, हत्ता वे उसको कत्ल कर दिया, फिर आप सल्लम को आके उसकी कत्ल की खबर दी। ये सबसे ज्यादा नबी सलाम का दुश्मन था, इतना बड़ा दुश्मन कि इसको फिरौन कहा गया, कितना बड़ा, इसके अंदर इतना तकबर था कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा अल्लाह के दुश्मन जब जख्मी पड़ा हुआ था तुझे अल्लाह ने जलील कर दिया, कहने लगा मुझे नहीं इसकी फिक्र, मुझे नहीं परवाह। फिर उसने कहा क्या तुम्हारी कौम ने मेरे से बड़े भी किसी आदमी को कत्ल किया होगा। फिर कहता है काश ये किसानों के अलावा किसी और ने मुझे कत्ल किया, अंसार को कह रहा ना ये किसान खेती बाड़ी करने वाले, यानी ये तो बिल्कुल ही लो ग्रेड लोग हैं जिसको हम कहते हैं कमी कमी, इस तरह की उसका सोचे वो मार रहा है तो तब भी उसकी क्या एरोगेंस। फिर कहता है कि मेरी गर्दन ना नीचे से काटना, तब पता चले कि किसी सरदार का सार है, ताकि गर्दन के साथ ऐसे लगाओ ऊंचा सा सार। कितना तकब्बुर उसके अंदर था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जगहें बताई हुई थी कि यहाँ ये फलां की जगह है, ये फलां के गिरने की जगह है, ये फलां के गिरने की जगह है, और हजरत उमर बताते हैं कि उसी जगह पे वो मरा हुआ था जहां पे आपने बताया था कि ये इसके इसके गिरने की जगह। फरमाया उस जात की कसम जिसने आपको हक दे के भेजा, ये हजरत उमर फरमाते हैं जिस जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाया था कोई काफिर उस जगह से आगे नहीं बढ़ा था, वहीं उसको वो खत्म हुआ था, फिर उन सारे काफिरों को एक दूसरे के ऊपर एक कुएं में डाल दिया था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे उस कुएं के पास गए और फरमाया फलां बिन फलां फलां बिन फलां, जब जंग खत्म हो गई ना सारे उनकी लाशों को पहले पड़ा रहने दिया, फिर उसके बाद उनको कुएं में डाल दिया गया। क्या तुमने वो बरहक जान लिया जिसका तुमसे अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था, नहीं क्या तुम्हारे साथ जो वादा अल्लाह रसूल ने किया था वो पूरा हो गया, क्योंकि मैंने तो उसको पूरा होते देख लिया। तो हजरत उमर ने उस वक्त पूछा था या रसूल्ला इनको कहाँ आपकी बात पहुंच रही होगी, आप इनसे जो मर चुके हैं उनसे आप बात कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि जितना तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, तुम मेरे कलाम को उनसे ज्यादा सुनने वाले नहीं हो, हाँ यानी वो भी उतना ही सुन रहे हैं जिस तरह तुम सुन रहे हो, अलबत्ता वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते, अल्लाह ताला ने सुनवा दिया उनको। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की मर्जी क्या थी कि हक हक हो के आगे आ जाए, सबको पता चल जाए कि हक क्या है, हक साबित हो जाए, कुफर का जोर टूटे, इनके ऊपर ऊपर के सारे ये कत्ल हो जाए, खत्म हो जाए। और देखें दूसरी कौमों को तो अल्लाह ताला ने आजाब दे के खत्म किया जब उन्होंने अपने रसूलों को इतना सताया कि उनके रसूल और रसूलों को कह दिया गया कि आप छोड़ दें बस्तियां, आपने सूरह आराफ में सारा पढ़ लिया, लूत अलैहिस्सलाम से कहा गया आप बस्ती छोड़ दें, और भी जितने पैगंबर थे उनको कहा गया आप बस्ती छोड़ दें, अब इनके ऊपर अजाब आने वाला है। इन लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर सताया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया बस्ती छोड़ दें, लेकिन इनके ऊपर अजाब आसमान से नहीं आया, इनके ऊपर ये अजाब था कि अल्लाह ताला ने इनको मुसलमानों के हाथों कत्ल कराया। लियुहिक्कल हक्का वयुबतिल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून, ताकि हक हक हो के साबित हो जाए, सामने आ जाए, और बातिल बातिल हो के पता चल जाए कि क्या है जो सच्चाई और क्या है कुफर है, वो बातिल है। अगर इस नबी के साथ, इन लोगों के साथ अल्लाह ना होता तो ये कैसे जीत सकते थे? सबके जहन में आती है ना बात। तो ये मकसद कोई गुस्सा निकालना नहीं था, या कोई बादशाहतें हासिल करना नहीं था इन जंगों का मकसद या इस जंग का मकसद, बल्कि ये था ये हक साबित हो जाए। इस तस्तवी सुना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब आप फरियाद कर रहे थे अपने रब से, तुम सब फरियाद कर रहे थे, असल में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा आपने की थी। और यहाँ पे जमा का सीगा इसलिए आया कि बाज जगह आता है कि आपकी दुआओं के पीछे मुसलमानों ने भी आमीन कही, और या फिर ये भी मतलब है कि सभी जाहिर अपनी अपनी जगह पे अल्लाह से फरियादे कर रहे थे। तो जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला था ना कि इतना बड़ा लश्कर है और ऐसे है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह थी जिसको जिसको आप कह दें साहिबान कह सकते हैं, छप्पर सा कह सकते हैं, वो आरीश उसको कहते हैं, वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला रुख हो के हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआएं की, लंबी नमाजें पढ़ी, दुआएं की दुआएं की, अल्लाह तूने मुझसे जो वादा किया उसको पूरा फरमाया, अल्लाह तूने जिस चीज का मुझसे वादा किया वो मुझे अता फरमा दे, अल्लाह अहले इस्लाम की ये जमात अगर हलाक हो गई इस पूरी जमीन पे तेरी कोई इबादत करने वाला नहीं रहेगा। आप हाथ उठा उठा के इतनी दुआएं कर रहे थे हत्ता कि आपकी कंधों से चादर गिर गई, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु आपके पास आए और चादर पकड़ के आपके कंधों पे डाली, फिर पीछे से आपके साथ लिपट गए, कहने लगे या रसूलल्लाह अल्लाह से आपने ये काफी दुआ की है, आपका रब आपसे किए हुए वादे को जरूर पूरा करेगा। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे ना तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, कबूल कर ली तुम्हारी दुआ। और देखें यहाँ पे यही आ रहा है, और ये जगह जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी वहां पे आज एक मस्जिद है। जो लोग मेरे साथ उमरे पे गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पे नमाज भी पढ़ी थी, तो मस्जिद आरीश उसका नाम है, तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की थी, तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं कबूल कर ली। और अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, बेशक मैं मदद देने वाला हूँ तुमको साथ 1,000 फरिश्तों के, जो पी मुसलसल आने वाले, मुसलसल एक दूसरे के पीछे आने वाले हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी कि अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल करने लगा और आपकी मदद के लिए यानी फरिश्ते उतरने वाले, ये किस लिए? इसलिए वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलिततमईन्न बिही कुलूबुकुम, ये इसलिए ताकि अल्लाह तुम्हारे ये तुम्हारे लिए खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए, आप काम डाउन हो जाए, रिलैक्स हो जाए, कि वरना अल्लाह ताला को मदद करने के लिए फरिश्तों की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को मदद करने के लिए किसी भी सबब की जरूरत नहीं है, वो तो कौन कहेगा तो हो जाना है। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसान है ना हम, तो इंसानों को जैसे किसी को कह दें तुम्हारी गैब से अल्लाह ताला मदद करने वाला है, तो वो बस अल्लाह ताला फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा, तो देखिए कि एकदम ना एकदम हौसला हो जाता है। इसी तरह उनको जब ये कहा गया तो इसलिए ये तुम्हारे लिए फरिश्तों की फौजें अल्लाह भेज रहा है, 1,000 फरिश्तों की भी उनको खुशखबरी दी गई, फिर फरमाया गया 3,000, फिर फरमाया गया 5,000 अल्लाह फरिश्ते तुम्हारे लिए भेज देगा, हालांकि एक फरिश्ता भेजना भी उसके लिए काफी, एक फरिश्ता है ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उठा के आसमानों पे ले जाकर पटक दिया था अपने पर पे रख के, तो पूरी बस्ती खत्म कर दी एक फरिश्ते ने, तो कहाँ ये इतने थोड़े से लोग, तो कोई भी चीज नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इसलिए ये 1,000 और 3,000 की बात की ताकि उनको ये हो कि हम कम नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते जो हमारे लिए आ रहे हैं। तो इंसान इंसान ही है, वो उसका दिल भर जाता है कि नहीं मेरे साथ हैं इतने सारे, अल्लाह ताला ने इनको भेज दिया। और वाकई हजरत इब्ने अब्बास ने बयान फरमाया कि उस रोज एक मुसलमान एक मुशरिक के पीछे दौड़ रहा था जो उसके आगे था, इतने में उसने अपने ऊपर से एक कोड़े की आवाज सुनी और एक घोड़ सवार की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था ए हैजूम आगे बढ़, हैजूम उस फरिश्ते के घोड़े का नाम था। फिर अचानक उसने देखा कि वो मुशरिक उसके सामने गिरा पड़ा, यानी इस तरह फरिश्तों ने वार किए। तो इस मुसलमान ने उस मुशरिक की तरफ देखा तो उसकी नाक पे चोट लगी हुई थी और उसका चेहरा इस तरह फट गया था जैसे किसी ने कोड़ा मारा, और उसका पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था। इस अंसारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वाकया सुनाया तो आपने कहा तुमने सच कहा, ये तीसरे आसमान से मदद आई है। तो इस दिन मुसलमानों ने 70 मुशरिकों को 70 को कत्ल किया और 70 को कैदी बनाया था। तो जब इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जब मुसलमानों ने कैदियों को गिरफ्तार कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबूबकर सिद्दीक और हज़रत उमर से फरमाया तुम्हारा इन कैदियों के बारे में क्या ख्याल है? तो अबूबकर सिद्दीक ने फरमाया या रसूलल्लाह ये हमारे अपने रिश्तेदार ही लोग हैं, मेरी तो राय ये है कि आप इनसे फ़दिया ले लें, इससे हमारी हमारी कुव्वत बढ़ेगी और शायद अल्लाह इन्हें इस्लाम की हिदायत भी दे दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से पूछा तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी तो राय ये है कि आप इन्हें हमारे हवाले करें ताकि हम इनकी गर्दनें उतार दें, जो जिसका रिश्तेदार है उसको उसके हवाले करें, मेरा जो रिश्तेदार है फला फला रिश्तेदार मुझे दे उसको, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, ये काफिरों के बड़े बड़े सरदार हैं और मैं दिखा देना चाहता हूँ अल्लाह ताला को कि किस तरह से हम अल्लाह ताला की खातिर अपने रिश्तेदारों को भी परवाह नहीं करने वाले, तो कि हम सच्चे हैं और अल्लाह ताला की उसमें अल्लाह के लिए हम सिंसियर हैं। तो अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को उतारा ताकि तुम्हारे दिलों को मुतमईन कर दे। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदल्ला, लेकिन असल समझने की बात यह है मदद अल्लाह ही के पास है, यानी मदद फरिश्तों की बात नहीं कि फरिश्ते उतरेंगे तो मदद होगी या कोई सबब होगा तो मदद होगी, असल बात यह है कि मदद तो अल्लाह की तरफ से ही होती। इन अल्लाह अजीज और हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब है, कुव्वत वाला है और हिकमत वाला है। इज यो खशी कुमुन्नु आसा अमन तमिन। अब यहां से ये बात आ रही है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने एहसानात किए मुसलमानों के ऊपर, क्या अल्लाह ताला की ऐसी गैबी मदद आई मुसलमानों के लिए कि जिससे कि उनके लिए किस तरह से आसानियां ही आसानियां होती गई। अब ये देखिए ना, ये हमें बताता है कि जिस वक्त इंसान अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके चलता है तो देखो वो रब कैसे हर चीज में उसकी मदद फरमाता है और कैसे उसको ढारस देता है किन चीजों के साथ। तो वो जो एहसानात है ना अल्लाह ताला के इस सारे मार्के में, उसमें पहला अल्लाह ताला की तरफ से जो हेल्प आई है, जो मदद आई है, जो अल्लाह ताला का एहसान हुआ है, वो ये है कि जब तुम्हें ऊंग ने ढांप लिया अमन वाली, यानी मुसलमान ये एक इसका मतलब ये है कि उससे जो पहली रात थी जब अगले दिन जंग थी, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मुसलमान ऐसे सो रहे थे कि कोई नहीं जागा पाता सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो नमाज पढ़ते चले जा रहे थे, हर एक लोग इतने सुकून के साथ गहरी नींद सो रहे थे। वरना आप देखें इतनी परेशानी का आलम था कि कल दुश्मन से लड़ना है, हमारा तो छोटा सा इम्तिहान ही हो, सारी रात नींद नहीं आती, कोई जरा सी परेशानी हो जाए इंसान रात भर जागता रहता है। इन्होंने जंग लड़नी थी, अल्लाह ताला ने नींद मुसल्लत कर दी, फिर अगले दिन बिल्कुल फ्रेश उठे। तो ये अल्लाह ताला की एक मदद थी ना नींद तारी करना। दूसरी ये थी कि ऐन जंग के मैदान में एक गनूदगी सी तारी हो गई, या नहीं, बिल्कुल एक जैसे थोड़ी देर के लिए ना गुनूदगी हो गई और उसके बाद वो बिल्कुल फ्रेश हो गए, ये भी अल्लाह ताला की एक मदद थी। अल्लाह अकबर। और इसी तरह नींद को बताया गया ना कि ये मौत की बहन है, और यहां पे नींद को कहा गया अमनतम मिन, यहां पे नींद को अमन और सुकून की चीज बताया गया। तो इससे एक बारीक सा नुक्ता है जो उलमा ने बयान किया, मुफस्सिरीन ने, कि देखो जब नींद मौत की तरह है, तो अगर ये नींद अमन वाली और सुकून वाली और राहत वाली हो सकती है, तो हकीकी मौत जब आएगी तो वो भी मोमिन के लिए सुकून का बायस होगी, वो भी मोमिन के लिए सुकून का बायस होगी। वो दुआ भी है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जिसका आखिरी हिस्सा वजल हयात ज़ियादतन ली फी मिन कुल्ली खैर वजल मौत राहतम ली मिन कुल्ली शर, अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा बनाना, ऐसी बनाना कि हर लम्हे खैर में इजाफे का सबब बने, और ऐ अल्लाह मेरी मौत को ऐसी बना देना कि जो मेरे लिए हर किस्म से के शर से राहत का सामान हो। तो इसका मतलब है मौत राहत का सामान भी हो सकती है जिसके लिए अल्लाह चाहे। अगर नींद बन सकती है ना अमन अतन मिन हो, तो मौत भी बन सकती। तो उनको उस ऊंग ने ढांप लिया। एक रात पहले भी सो जाना उनका अल्लाह की मदद थी, और इस वक्त में जिस वक्त जंग के मैदान में, उस वक्त भी एक ऐसा नींद का थोड़ा सा झोंका, एक हुनूदगी आ जाना, वो भी अल्लाह की एक मदद थी। युनज़िलु अलैकुम मिनस्समाई माअन लियुतहिरकुम बिही, और वो उतार रहा था तुम पर आसमान से पानी ताकि वो पाक कर दे तुमको इसके साथ। अब आप देखें कि मुसलमानों के पास उस वक्त पानी नहीं था, वुजू की मुश्किल थी, जो एहतलाम की हालत में थे, जुम्बी हो गए थे, उनको गुसल की ज़रूरत थी। अब उस वक्त के अंदर अल्लाह ताला ने बारिश बरसा के आसमान से उनकी पाकी का इंतजाम कर दिया। बारिश वैसे भी इंसान के लिए कितनी एक प्लेजेंट चीज़ होती है, और पाकी का भी जरिया हो गई, फ्रेश कर देती इंसान को। कभी डिप्रेस वगैरह भी हो, वुजू कर लें तो इंसान कितना बेहतर फील करता है। कभी उदास हो, बारिश होने लगे तो इंसान की कितनी कैफियत डिफरेंट हो जाती है। वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, और ले जाए तुमसे गंदगी शैतान की, निजासत शैतान की, यानी इंसान की जो घबराहट, जो वसवसे, जो शैतान की तरफ से आ रहे हैं, कि एक एंगजाइटी होती है ना, ये देखिए ना, शैतान इंसान को मुसलसल वसवसे डाल डाल के गमगीन करता है, डिप्रेस करता है, तो वो भी अल्लाह ताला दूर कर दे। कि जब बारिश हो रही है और इंसान फ्रेश भी हो गया है, पानी मिल गया है, तो ये एक ऐसी चीज थी कि वसवसे भी शैतानी दूर हो जाए। शैतान दिल में डालता है ना तुम्हारे साथ, तो अल्लाह नहीं है, देखो तुम्हारी क्या हालत हो रही है, देखो तुम किस मुसीबत में फंस गए हो, तो अल्लाह ताला की हेल्प आने से वो वसवसे भी दूर हो रहे हैं। तो रिज़ असल में इंसान की मुसलसल परेशानी के लिए आता है, बेचैनी नहीं होती अंदर, उसके लिए आता है। और ये देखिए यहाँ पे रिज़, वैसे तो रिज़ कुरान पाक में अजाब के लिए भी आया है लफ्ज़, अजाब के लिए, लेकिन यहाँ पे शैतान जो वसवसे डालता है उसके लिए, इंसान को जो एंक्शस रखता है, डिप्रेस करता है, उसके लिए। तो बारिश की वजह से आसानी हो गई, और ये भी आसानी हो गई कि सुभान अल्लाह, मुसलमान जिस जगह पे थे वहां पे रेत थी, और बारिश से पहले उनके पैर धस रहे थे, लेकिन जब बारिश हो गई तो वो जो रेत थी वो बैठ गई, अब पांव दसने बंद हो गए, अब आराम से उसके ऊपर चल सकते थे, जबकि काफरों की तरफ ऐसा हो गया कि जैसे बिल्कुल एक यानी है कीचड़ सा, तो उसमें चलना मुश्किल हो गया। हम लोग देखे ना कि जब आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की एक गैबी मदद आ रही है हमारे लिए, उनके लिए मुश्किल हो रहा है और हमारे लिए आसानी हो रही है, तो कितने इंसान को तसल्ली हो जाती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बारिश नाजिल फरमाई अल्लाह ताला ने, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से रवाना हुए और कुफारे कुरैश पर सबकत करके फिर नजदीक तरीन पानी के कुएं पर पहुंच गए। हजरत हब्बाब बिन मुंजर ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने वही के जरिए आपको इस जगह का कहा है या आप खुद यहाँ पे ठहरना चाहते हैं, आपने कोई जंगी स्ट्रेटजी सोची है? तो आपने फरमाया ये बस जंगी हिकमत अमली है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म नहीं हुआ। तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह, तब आप मेरा मशवरा यह है कि आप यहाँ से आगे ऐसी जगह क्याम करें कि बदर के सारे कुएं हमारे पीछे हों, फिर एक कुएं के सिवा बाकी तमाम कुएं बंद कर दें और जमीन खोद के एक हौज बना दें और उसमें सारा पानी जमा कर लें, ताकि इस हौज पे हमारा कब्जा हो, फिर जब हम चाहें वहां से पानी लें। तो ये उसके बाद फिर मुसलमानों ने वहां पे, अभी जंग नहीं शुरू हुई, अभी वो दुश्मन दूसरी तरफ है और ये इस तरफ है, अब इन्होंने जाके इस जगह पे कब्जा कर लिया। वली यौरबी तो आला कुलूबिकुम व युसब्बित भील अकदाम, और ताकि बांध दे तुम्हारे दिलों को, और युसब्बित भील अकदाम, और इसके जरिए तुम्हारे कदमों को जमा दे, दिलों को ढारस बंधा दे, ये भी अल्लाह की एक मदद है। देखें जो दिल है ना, ये अल्लाह ताला की करीम उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह ताला चाहे तो दिलों को बांध दे, जैसे उम्मे मूसा का दिल अल्लाह ताला ने बांध दिया था ना, जिस वक्त मूसा अलैहि सलाम को उसमें डाला था छोटी सी बास्केट में और दरिया में डाल दिया, तो उस वक्त दिल इतना घबराने लगा, उड़ने लगा दिल जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला ने उनका भी दिल बांधा था। इसी तरह खौफ में, घबराहट में अल्लाह ताला चाहे तो दिलों को बांध दे, और मोमिनों के दिलों को अल्लाह ताला इस तरह बांध देता है, इस तरह मजबूत कर देता है। और अल्लाह की एक और मदद आई कि तुम्हारे कदमों को जमा दे, तो जब दिल मजबूत होंगे तो जंग में भी आराम से चले जाए। जाहिर है दिल ही घबराने लगता है ना, तो फिर इंसान पैनिक हो जाता है, डर जाता है, खौफजदा हो जाता है। अगर दिल कमजोर हुए तो डर था कि जंग में घबरा जाएंगे, भाग जाएंगे, अल्लाह ताला ने दिल मजबूत कर दिया, फरिश्तों का नजूल का पता चल गया, ये भी एक मदद थी। बारिश हो रही है, फिर कदम भी जम गए, कदम जमने ये भी हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जगह जो थी वो रेत वाली थी और उस पर बारिश हुई तो चलना आसान हो गया, और कदमों का जमाना वैसे भी है कि अल्लाह ताला ने इनकी मदद जब फरिश्तों से करने का वादा कर दिया तो अल्लाह ताला ने इनके कदमों को जमाने का इंतजाम कर दिया। तो अल्लाह ताला ने जो डगमगा रहे थे कदम, उनको जमा दिया, और फिजिकली भी जमा दिया। इज यू ही रब्बु का इलल मलाइकति, जब वही की अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तरफ, तेरे रब ने फरिश्तों की वही की तरफ वही की, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या वही की, जो फरिश्ते उतरने वाले थे। अब पता है इन फरिश्तों का मकाम कितना है, जिब्राइल अलैहि सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम से पूछा था कि या रसूल अल्लाह आपके पास बदर वालों का क्या मकाम है। तो आपको पता है ना बदर वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था जो बदर की जंग में लड़े थे, अब इसके बाद वो जो भी करें उनके लिए माफी है। इस तरह उनका मकाम तमाम मोमिनों में सबसे ऊपर था, बुलंद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सब मोमिनों में अफजल है, तो जिब्राईल अलैहि सलाम ने फरमाया इसी तरह वो फरिश्ते जो बदर में लड़े थे उनका मकाम फरिश्तों में बुलंद है। तो अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों की तरफ वही की, अन्नी माकुम, कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूं, फसब्बितु लदीन आमनु, तो तुम जमा दो मुसलमानों को, ईमान वालों को। यानी अल्लाह ताला किस किस तरह, देखें सुभान अल्लाह, मदद फरमा रहा था। और अल्लाह की मदद जब आती है ना, तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि कहाँ से आ रही है। हम बहुत असबाब को सोचते हैं, ये होगा तो फिर ये होगा, वरना तो ये हो ही नहीं सकता। जैसे अब यहाँ पे सोचा जा सकता था कि अगर इतनी कुव्वत नहीं है, इतने लोग नहीं है, इतना असला नहीं है, सब चीजें कम है उनसे, तो कैसे जीत सकते हैं? हो ही नहीं सकता कि जीत जाए। लेकिन जो अल्लाह ताला की मदद होती है ना, वो असबाब की मोहताज नहीं होती। और असबाब पैदा करने वाला भी कौन है? अल्लाह ही तो है। असबाब का मालिक कौन है? अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, आप देख रहे हैं, ऐसे नहीं आपको लग रहा कि जैसे सारी मशीनरी जो है वो सारी मुसलमानों की मदद में लग, फरिश्ते हैं, आसमान है, जमीन है, फिर उनके दिल भी अल्लाह के हाथ में, उनके दिलों का बंद जाना है, उनका स्ट्रेस खत्म हो जाना है। वो जो दिल उड़ना शुरू कर देता है, धक धक करता है, धक धक करता है, वो काम डाउन हो गए, वो सब क्या है? ये सब सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हो सकता है। ये ऊंग का आ जाना परेशानी के वक्त में, ये भी अल्लाह की मदद होती है। इंसान काम डाउन हो जाए, लेकिन नमाज में अगर ऊंग आए तो वो शैतान की तरफ से, लेकिन परेशानी में, गम में अगर इंसान को नींद सी आने शुरू हो जाए, समझ ले अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मदद है। तो ऐसे लग रहा है सारी कायनात इस छोटे से गिरोह के साथ अमल में आ गई है, चल पड़ी है, क्योंकि रब का फैसला जब हो जाए ना मदद करने का, तो सब लश्कर उसके हैं। ये जमीन आसमान उसका, ये चरिंद परिंद उसके, ये हवाएं उसकी, हर चीज तो उसके कब्जा कुदरत में है। तो जिसके साथ अल्लाह लग जाता है, ये सारी कायनात उसके साथ हो जाती है। और जिसका साथ अल्लाह छोड़ दे, फिर उसका कोई वाली वारिस नहीं। हम इंसानों को चाहते हैं कि ये हमारे हिमायती बन जाएं, ये हमारे सपोर्टर बन जाएं, ये हमारी मदद करेंगे तो हमारे कुछ काम बन सकेंगे। ओहो, ये साथ नहीं है तो मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे कोई इंसान साथ नहीं आए। यहाँ पे देखो कैसे, अब आसमान पे किसी और का बस नहीं है, अल्लाह ने बारिश नाजिल कर दी। नींद पे किसका बस है कि ऊंग आ गई? दिल बांधना, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। कदम जमाना कोई नहीं कर सकता। वसवसों से निजात देना कोई नहीं कर सकता। ये अल्लाह ही है जो थाम लेता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी चीज में बड़ी घबराहट हो रही थी, फिर आपने दुआएं की, फिर उसके बाद आपका दिल इतना मुतमईन हो गया? वो क्या होता है, ये कैसे होता है? वली और अभी तो आला कुलूबिकुम, ताकि बांध दे अल्लाह तुम्हारे दिलों को। अल्लाह बांध देता है दिल। और देखिए ये फरिश्तों का भी ना, सूरह हामिम सजदा में अल्लाह ताला अल्लाह अकबर के उसमें आता है ना, कि जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, वो भी इस पे साबित रहते हैं, अल्लाह ताला फरिश्ते उनके लिए उतार देते, और फरिश्ते वो उनको कहते हैं कि ना डरो, ना गम करो, हम जो तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को उतारता है कि वो मोमिनों को साबित करें, जमा दें उनको। सअल्की फी कुलूबिल्लदीना कफर रन करीब, मैं डाल दूंगा इन काफरों के दिलों में रोब। अच्छा, अब ये रोब भी डालना, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। कोई किसी के दिल में रोब नहीं डाल सकता किसी का, ये तो अल्लाह ताला का ही एक खास फजलो करम होता है। ये अल्लाह की मदद थी। क्या हुआ था कि काफरों के दिल के अंदर मुसलमानों का रोब पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने। अब ये भी देख लें कि अगर इंसान प्लानिंग करे तो वो तो शायद लिमिटेड चीजें सोच सकता है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये थोड़ी तो सोचता है कि हाँ किसी तरह इनके दिल में रोब पैदा हो जाए, ये भी हो जाना चाहिए एक चीज। ये सारी अल्लाह की तकदीर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इम्तियाज थे ना दूसरे अम्बिया पे, उनमें एक ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब अल्लाह ताला ने इतना रखा था कि दुश्मन 1 महीने की मसाफत से आप में से रोब में आ जाता था। तो ये 313 है लेकिन इनका रोब है, ये असल में इंसानों का नहीं रोग होता, ये पता है किस चीज का होता है रोग? ईमान का रोग होता है। जब ईमान अंदर होता है ना तो काफिर मरवूब हो जाता है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना सहाबा से कि एक दिन ऐसा आएगा कि दूसरी कौमें तुम पर ऐसे झपटेंगी जैसे भूखे खाने पे झपकते हैं। भूखे जो लोग होते हैं ना दस्तरखान पे खाना पड़ा हो तो कैसे झपटते हैं, इस तरह दूसरी कौमें तुम्हारे पर मुसलमानों पे झपटेगी। तो सहाबा हैरान हुए, अच्छा उस दिन बहुत कम होंगे तो फिर इसलिए ऐसा होगा? फरमान नहीं, तुम उस दिन कम नहीं होगे, तुम बहुत ज्यादा होगे, बहुत ज्यादा होगे। लेकिन तुम्हारी हालत क्या होगी? जैसे सैलाब के आगे खसो खाशाक, यानी कोई इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं। उस दिन तुम्हारे दुश्मन के दिल से तुम्हारा रोब खत्म हो जाएगा। तो साहब ने पूछा था या असला ऐसा क्यों होगा? आपने फरमाया कि तुम्हें ये वहन की बीमारी लग जाएगी। वहन क्या है? हुब्बे दुनिया और कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के पीछे भागना, इसकी वजह से रोब ही खत्म हो जाता है। जब मुसलमान डरने लगे ना मौत से और दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर हो तो काफिर के दिल में कोई रोग नहीं रहता। अल्लाह अकबर। इसलिए तो वो हदीस में आता है ना कि जब तुम्हारे हालात ऐसे हो जाएंगे कि तुम अपनी खेती पहाड़ियों में ही लग जाओगे, यानी तुम अपनी दुनिया में कारोबार है, काम है, ये उस जमाने में खेती बाड़ियां होती थी, जॉब्स हैं, ये हैं चीजें, और जिहाद को छोड़ दोगे यानी अल्लाह ताला के दीन के लिए मर मिटने का जज्बा ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जिल्लत तुम पे मुसल्लत अल्लाह ताला कर देगा, ऐसी जिल्लत कि वो खत्म नहीं होगी जब तक तुम दीन पे वापस ना आ जाओ, दोबारा दीन को अपनी प्रायोरिटी ना बना लो। आज देख रहे ना, रोब तो ईमान का था ना, जब ईमान ही नहीं है, ईमान कमजोर हो गया तो रोब भी नहीं रहा। जब तक मुसलमान ईमान पे थे, सच्चे दीन पे थे, तब तक दुनिया उनसे डरती थी। और ये सिर्फ मुल्कों का मामला नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ में भी। अगर हम अपनी देखें तो हमारी प्रायोरिटीज में क्या है, कहीं ये नहीं है कि दीन की खातिर कोई कुर्बानी देना, कोई इसके खातिर कुछ कुछ जरा सा भी कुछ लूज करना, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। एक नींद नहीं हमसे लूज होती, एक थोड़ी सी शॉपिंग नहीं हमसे लूज करने के ऊपर हम तैयार होते, जरा सा हम अपने डेली लाइफ में से थोड़ा सा वक्त निकालने को तैयार नहीं होते। क्या हम करने को तैयार है अपने दीन के लिए? सिर्फ बातें? तो क्या रोब रहेगा हमारा? बातों से किसी के ऊपर रोब नहीं पड़ता। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे ना, हमारे पास ईमान है, हमारे पास ये दौलत है, हमारे पास फलां है, हम ऐसे वैसे, दुनिया आपकी बातों को नहीं सुनती। हम तुम्हारा किला कमा कर देंगे, हम हमारे साथ फरिश्ते हैं, हमारे साथ ये, भाई आपके साथ ईमान की दौलत ही नहीं तो आपके साथ फरिश्ते क्या होंगे? तो ये रोब अल्लाह ताला ने काफरों के दिलों में डाल दिया, इसलिए 313 यानी थर्ड थे उनका, एक के मुकाबले में तीन थे, तो तब भी फतह हुई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया फद्रिबू फौकल आनाक, उनकी गर्दनों पर मारो, वद्रिबू मिनहुम कुल्ला बनान, और मारो इनके जोड़ों पर, ये जोड़ है ना इंसान के, जोड़ होते हैं ये, उसकी नकल्स भी हैं, उसके पैरों के भी जोड़ हैं जहां से इंसान चलता फिरता है। तो उनको कहा गया कि आप फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनके यहाँ पे मारे और इन इनकी गर्दनों पे मारो। और मैंने फिर जैसे कि आपको बताया कि उसके बाद जब लोगों ने देखा तो वाकई वो जो लोग जिनको फरिश्तों ने कत्ल किया था उनके ऊपर ऐसे निशान थे जैसे कोड़ा मारा गया या जैसे जलने का निशान हो, इस तरह के निशान उनके ऊपर पड़े हुए थे। हत्ता कि यहाँ तक ये है कि साहिब बिन अभी हुवैश असदी हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में बयान करते हैं कि खुदा की कसम मुझे किसी इंसान ने नहीं पकड़ा था, उनसे पूछा फिर किसने पकड़ा था। उन्होंने कहा जब कुरैश ने शिकस्त खाई तो मैंने भी उनके साथ शिकस्त खाई। उस वक्त तो ये मुसलमान नहीं हुए थे ना। तो कहते हैं मुझे सफेद रंग के एक लंबे आदमी ने पकड़ा था जो आसमान और जमीन के दरमियान एक चितकुबड़े घोड़े पे सवार था। उसने मुझे रस्सियों से बांधा था। तो हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ आए हैं तो उन्होंने मुझे बंधा हुआ देखा। तो उन्होंने पूछा कि इसको किसने बांधा है। तो किसी ने भी नहीं आगे से जवाब दिया। हत्ता कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। आपने मुझसे पूछा तुमको किसने गिरफ्तार किया। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता और मैंने जो कुछ देखा था वो बता दिया। आपने फरमाया इसको फरिश्तों में से एक करीम फरिश्ते ने गिरफ्तार किया। इन्होंने फिर ये बात उस वक्त बताई है जिस वक्त इस्लाम लेकर आए कि मुझे एक ऐसा आदमी था उसने पकड़ा हुआ था। हकीम बिन हज्जाम बयान करते हैं जब वो इस्लाम नहीं लाए थे तो कि मैंने उस दिन देखा आसमान एक स्याह चादर से ढका हुआ। उस दिन उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आसमान से कोई चीज आ रही जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद की गई और इस वजह से शिकस्त हुई। और वहां पे हमने मैदान बदर में देखा भी था एक पहाड़ी आज भी है कि वो बिल्कुल सफेद है उसकी रेत। तो फिर हमें वहां पे बताने वाले जो हमारे गाइड थे तो उन्होंने बताया कि ये वो पहाड़ी है जिसको कहते हैं जबल मलाइका। यहाँ पे फरिश्ते उतरे थे। तो ये फरिश्तों की तरफ से भी जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था तो एक वो भी एक गैबी मदद थी अल्लाह की। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ। क्यों इनको मारो इनकी गर्दनों पे और इनके जोड़ों पे क्यों मारो। क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने मुखालफत की अल्लाह की और उसके रसूल की। वहीं यशाक अल्लाह और रसूलहू फइन अल्लाह शदीदुल इक़ाब। और जो मुखालफत करता है अल्लाह की और उसके रसूल की तो अल्लाह ताला बड़ा सख्त सजा देने वाला भी है। उन्होंने सिर्फ मक्के में नहीं सताया उन्होंने बाद में भी जीना दूभर किया हो। तो जो ये करेगा तो और जो अपने नबी के साथ ये करेगा तो फिर मैंने आपको बताया ना कि दूसरी कौमों पे अजाब आसमान से आए। इनके लिए अजाब बदर की सूरत में था। ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ। ये बात ये इसलिए ये नाकामी जो काफरों को देखनी पड़ी और ये जो उनकी गर्दनें मारी गईं ये जो उनको जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी ये बात फजूकू पस चखो इसको और बेशक काफरों के लिए अजाब नार है आग का अजाब है। ये तो दुनिया में थी जो तुमने देखी है ये शिकस्त दुनिया की है। इसको तो अभी चखो और आगे के लिए तुम्हारे लिए आग का अजाब रखा हुआ। या अय्युहल्लदीना आमनू। अब ईमान वालों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। अच्छा यहां से अब आप देखेंगे आयत 15 से ये 14 तक आपने देख ली ना बदर के सारे हालात। 15 से 28 तक मैंने आपको जैसे बताया कि हिकमत अमली जंग की और जब भी कोई लड़ने की कोई या ऐसी कोई मुहिम हो तो उसमें क्या उसके आदाब हैं क्या कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है ये बातें। तो ऐ ईमान वालों हम उनको कहा गया है इदा लकी तुमुल्लदीन कफरू जहफन। जब मुलाकात करो तुम काफरों से यानी जंग हो तुम्हारी काफरों के साथ फेस टू फेस आओ तुम काफरों के जहफन यानी किसी बड़े लश्कर के साथ जंग के लिए तुम आए हो। फला तुवल्लूहुमुल अदबार। बस ना पीठियों को फेरो उनसे। यानी वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कभी जंग की तमन्ना ना करो। ठीक है ये जो हम बहुत शौक रखते हैं ना बाज लोग जिनको दिमाग पे जुनून सवार रहता है जंगों का हम ऐसे कर देंगे हम लड़ पड़ेंगे हम फलां करेंगे ठीक है जान जाती जाए। नहीं आपने क्या फरमाया कभी जंग की तमन्ना ना करो। दुश्मन से आमने सामने होने की तमन्ना ना करो क्योंकि जंग जो होती है ना बहुत खौफनाक चीज होती है। इसको कोई बहुत कुछ ग्लैमराइज करके नहीं बताया गया कि बड़ी अच्छी है बस जंगे किया करो हमेशा ये नहीं कहा गया।
लेकिन आपने फरमाया अगर दुश्मन से मुठभेड़ हो जाए, आमना सामना हो जाए, तो फिर तुम डट जाओ आगे उसके, फिर समझ जाओ कि जन्नत तलवारों के साए में है। तब की ये बात है, ऐसे नहीं है कि बस बैठे बैठे आप सोचे बट उठ के लड़ना शुरू कर दें, हम तो लड़ने वाले हैं, नहीं ये नहीं चीज है। जब तुम दुश्मन के साथ तुम्हारा मुकाबला हो तो फिर आप पीठ नहीं फेरनी, फिर अपने आप को बांध के रखो वहां पे। देखिए आले इमरान के एंड में पढ़ा था ना, ये लदीना मनु सुरीरु व सौबिरु व राबितु वत्तकुल्ला, सबर, सबर यही है ना, रोकना अपने आप, रोक लेना। रोक लेना किस चीज से रोक लेना, जंग के मैदान में है तो वहां पे खुद को ठहराओ, रोको वहां पे, जहां पे भी अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं है उस काम को करने से खुद को रोक लेना। मसलन आपका जी चाह रहा है चीखने का, रोने का, सीना पीटने का, बयान करने का, लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ है, तो ये फिर सबर है। आपका जी चाह रहा है इतना खुशी की कोई आपको बात पता चली है, इंतहाई खुश होने का दिल कर रहा है कि बस आज तो सब लिमिट्स क्रॉस, आज आपे से बाहर हो जाओ, आज कुछ नहीं देखना हमने, क्योंकि आज हमारी इतनी बड़ी खुशी की बात है। लोग कहते हैं ना आज बस, आज नहीं कुछ सोचना हमने, क्योंकि आज हमारा इतना ये बस खुशी का दिन हमें मिला है। तो ऐसे वक्त में भी खुद को आपे से बाहर ना होने देना, ये सब्र है। अपने जो भी नेचुरल रिएक्शंस है ना, उनसे खुद को रोकना जबकि वो अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ हैं, ये सब्र है। आप जंग के अंदर क्या है, जब इतने बड़े दुश्मन से आमना सामना हो रहा है तो अब एकदम घबराहट है, आप भाग जाओ यहां से, उस वक्त अपने आप को रोक लेना, ये सब्र है। और यही कहा गया फला तुवल्लूहुमुल अदबार, पीठे ना फेरना उनसे, क्योंकि ये बड़े गुनाहों में से है, सबा मुबिकात में से है, यानी उन गुनाहों में से जो हलाक कर देने वाले 7 गुनाह हैं, जिनमें शिर्क है, जिनमें सूद खाना है, जादू है, बोली भाली औरतों के ऊपर तुहमत लगाना है, ये सब बड़े बड़े गुनाह। इनमें से एक ये भी है कि इंसान जंग से पीठ फेर जाए, जंग हो रही है और भाग जाए। वह मई युवलिहिम, अब देखें ये कितनी एक शर्मनाक बात होती है ना, उस पूरी कौम के लिए भी, जिस कौम के फौजी सिपाही भाग जाए जंग छोड़ के, डर जाए नाकामी के खौफ से या किसी भी वजह से भाग गए, जंग से भाग गए, तो ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। कहते हैं ना कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने हथियार डाल दिए, तो पूरी कौम के लिए एक शर्मनाक होती है। मर जाए तो ठीक है, फिर भी होती है कि ये जान दे दी, देखो लड़ते लड़ते, तो बहादुरी समझी जाती है ना, लेकिन भाग जाना तो बुजदिली समझी जाती है। इसलिए इतना बड़ा ये हराम काम है, इतना बड़ा जुर्म है कि फरमाया व मैं युवलीहिम योम इतिन दुबूरा हूँ, और जो फेरेगा उस दिन, किस दिन, जंग के दिन, अपनी पीठ, सिवाय एक्सेप्शंस के, 2 एक्सेप्शंस है, इल्ला इल्ला से फीअतिन तक एक्सेप्शन है, इन 2 एक्सेप्शंस के सिवा जो अपनी पीठ फेरेगा उसके लिए आगे क्या है, अब इसको छोड़ के जरा हम आगे पढ़ लेते हैं। फकत बा अब गौदब मिन अल्लाह वाहु जहन्नम, तो उसके वो पलटा अल्लाह के गुस्से के साथ, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है जो जंग से भागेगा। मगर अब एक्सेप्शनल सूरतें 2 हैं सिर्फ, मुतहर्रिफ होना या मुतहय्यिज होना। मुतहर्रिफ का माना क्या है, मोड़ने वाले के जंग के लिए, यानी मुड़ना जंग के लिए मतलब है कि जैसे इंसान जंगी चाल के तौर पे, एक वॉर टैक्टिक के तौर पे ना, अपनी पोजीशन चेंज करता है दुश्मन को धोखा देने के लिए, ठीक है, पीछे जाके फिर उसके बाद आ रहा है हमला करने के लिए। वो पीछे जा रहा है इसलिए नहीं कि भाग रहा है, वो इसलिए पीछे जा रहा है कि दोबारा उस तरफ से आए, तो एक टैक्टिक के तौर पे तो सही है वो, उसकी एक्सेप्शन है। दूसरा है मुतहय्यिज, मुतहय्यिस क्या है? पनाह लेने के लिए। यानी एक अगर कोई अकेला बच गया और वो कह रहा है कि ओ मैं भागूं और अपने पूरे ग्रुप के साथ जाके मिल जाऊं और फिर लड़ने के लिए आऊं, तो वो है मुतहय्यिस। तो वो पनाह लेने वाला है अपने ग्रुप की तरफ, एक ग्रुप की तरफ यानी अपने ग्रुप की तरफ जाके उनको ज्वाइन करना चाहता है और फिर आके लड़ेगा, तो वो भी भागने वाला तो नहीं है असल में, लेकिन पीछे को जा रहा है। पीछे जा रहा है तो उससे ऐसे लगेगा कि ये भाग रहा है लेकिन वो अपने ग्रुप से मिलकर लड़ने आ रहा है। इन दो एक्सेप्शंस के अलावा कोई पीठ फेरता है दुश्मन से तो अल्लाह ताला का गजब है उसके लिए और जहन्नुम है उसके लिए। फलम तख्तलूहुम, तो नहीं तुमने कत्ल किया उनको, वलाकिन अल्लाह कत्लहुम, लेकिन अल्लाह ने उनको कत्ल किया। यानी जिनको तुमने मारा है, तुम सोचते हो कि हमारे करने से कुछ हुआ, तुम्हारे करने से नहीं हुआ, असल में तो अल्लाह ही है। यानी इंसान को बताया गया कि मसलन कोई भी काम वो करता है ना, तो उस पे अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, इसके ऊपर कभी वो नाज नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी उसका काम है वो सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी मदद से ही होता है। वो सलमान पूरी कुव्वत से भी लड़ ले, तब भी जब तक अल्लाह की मदद ना हो तब तक कोई मार्का नहीं जीत सकते। तो फिर ये कहना मैंने ये कारनामा किया, मैंने वो किया, देखिए ना बहुत दफा हमारे मुंह से ये बात निकल जाती है, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने ये इन्वेस्टमेंट की तो इतना फायदा हुआ, मैंने ये शेयर खरीदा था तो देखो जरा आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, फलां को मैंने ये मशवरा दिया था ना, उसने मेरे मशवरे पे चला था तो देखो आज ये। यानी मैं बहुत होती है, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो उनकी तो कुछ भी नहीं बनती, वो तो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। या फिर हम कहते हैं मैंने कहा था कि ये काम ना करना तो देखो नुकसान से बचे ना, मैंने कहा था ब्रेक लगा दो तो देखो, मैंने कहा था इस रास्ते से ना जाओ तो फिर देखो मैंने तुम्हें रोका था ना, तो फिर ही नहीं, हमारे करने से कुछ नहीं है, ये तो सब अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। तो तुमने नहीं उनको मारा, अल्लाह ने मारा है। तो बहुत बड़ा कोई कारनामा करके, बहुत बड़ा कारनामा था ये, देखिए ना बदर बहुत बड़ा कारनामा था, एक छोटा सा लश्कर और वो लोग जिनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी अरब में, जिनका कोई ऐसा नाम नहीं था अरब में, इनको कोई पूछता नहीं था अरब में, जिसमें गुलाम लोग हैं, कमजोर लोग हैं, ऐसे कोई वो नहीं थे जिनकी बड़ी बड़े नाम हो, बड़ी धूम हो अरब, और उन्होंने इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे दी, कोई छोटी बात थी? ये वो चीज थी जिसको आज हम कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, आज के वक्त के अंदर होती तो ये बात ब्रेकिंग न्यूज होती, जिसकी सारी दुनिया में धूम मच गई, देखो मुसलमानों ने ऐसा किया। उस पे भी कहा गया कि ये मत समझना मैंने फलां को कत्ल कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया, नहीं, अल्लाह अकबर। देखा है आपने कि इस्लाम में, हमारे दीन में कितनी नापसंदीदा बात है ये मैं अपने कारनामे गिनवाना और सुनवाना और सेल्फ प्रेज और सेल्फ प्रोजेक्शन, और हर चीज में हमें क्या सिखाया जाता है, अल्लाह ही की तरफ उसकी निस्बत करो। अगर तुम्हारे अपने हाथों से भी हो गया ना, तब भी तुमने नहीं किया। वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और जो आपने फेंका जब आपने फेंका था तो वो आपने नहीं फेंका लेकिन बल्कि वो अल्लाह ताला ने फेंका, और ये कौन सा फेंकना था? अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप एक मुट्ठी भर रेत और कंकर वगैरह थे उसमें वो उठाएं और इनकी तरफ फेंकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। और उसके बाद हर काफिर, जो 1,000 का लश्कर था, हर एक की आंखों में वो मट्टी पड़ गई, जिसकी उनकी नजरें चुनिया गई। अब देखें कि ऐसे में ये मट्टी का पहुंचाना इतने बड़े लश्कर तक, ये इंसान के बस की तो बात नहीं है। कोई भी मुट्ठी उठा के फेंके उसे ऐसा तो नहीं हो जाता। तो ये आपने नहीं किया, ये भी अल्लाह ने किया। अब मट्टी पड़ जाए आंखों में कितनी तकलीफ दे चीज होती है। अल्लाह ताला ने उनको परेशान कर दिया इस तरह, रेत की वजह से उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, उनकी नजर धुंधला गई। एक जर्रा ही चला जाए तो क्या हाल होता है, ये भी अल्लाह ही की मदद थी ना। तो ये आप का मट्टी उठा के फेंकना ऐसे लगता है कि जैसे आपने ही ये कर दिया, लेकिन आपने नहीं किया, ये भी अल्लाह ने किया। इससे पता चलता है जिंदगी में जब हम चलते हैं बहुत दफा पे ऐसा होता है ना, मैंने किया ना, लेकिन मेहनत तो मेरी ही थी ना, कर तो मैं ही रही थी ना, ये इम्तिहान तो मैंने ही दिया ना, ये पकाया तो मैंने ही ना, ये डिजाइनिंग मैंने ही की ना, लेकिन वो मेरी नहीं है। कितनी दफा हम सोचते हैं कि मेरी नहीं है ये, अल्लाह ये तूने ही कराया है। अगर मैं मेरे हाथों से हुआ लेकिन अल्लाह कराने वाला तो तू ही है, कि इंसान फिर कितना हम्बल हो जाता है ना, कितना झुक जाता है जब उसको ये होता है कि ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरी ताकत नहीं, ये तो मेरे रब का करम हो गया, मेरे रब का फजल हो गया कि मेरे से उसने कोई ठीक चीज करा दी, मेरी कहाँ ताकत है। तो चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंका था, फिर भी वो भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आप नहीं, वो अल्लाह ताला ही है, उसके पीछे भी अल्लाह ही है। यानी नबी भी नहीं कह सकता कि जो है ना मेरा देखो ये मैंने फेंका था तो देखो हुआ। तो हमारे जैसे लोगों को क्या जेब देता है कि हम करें, मेरा कमाल है, मेरी विजडम है, मैं बड़ी समझदार हूं, मैं बड़ी होशियार हूं, मैं बड़ी नेक हूं। और ये वाली युबली अल मुमिनीन मिनहु बला अन हसना, और ताकि आजमाए मोमिन को इससे आजमाइश अच्छी। अल्लाह ताला मोमिनों की आजमाइश कर दे, इसमें भी डाल के अल्लाह ने उनको आजमाया, उनकी सलाहियतों को आजमा के जाहिर कर दिया सबके सामने, खरा कर दिया उनको। अल्लाह ताला देखता है ना ये जिंदगी, इसलिए लियबलुअकुम अय्युकुम अहसन अमला, ये जिंदगी है ही इसलिए कि अल्लाह देखे कि तुम में से कौन अहसन अमल करता है। अल्लाह देखना चाहता है कि कौन है जो अंदर और बाहर से एक है, कौन है जो मेरे आगे आजजी इख्तियार करता है, कौन है जो शुक्रगुजार है, कौन है जो कामयाबी मिलने पे भी झुका रहता है, कौन है जो अल्लाह पे भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, कौन है जो भाग जाता है, और कौन है जो साबित कदम रहता है, कौन है जो खड़ा रहता है। कराना तो पीछे अल्लाह नहीं है, मगर इंसान क्या करता है, इरादा करता है, अल्लाह ताला फिर मदद फरमाता है। और दूसरा बला का मतलब इनाम भी है, तो ताकि इनाम दे अल्लाह मोमिनों को उससे अच्छा इनाम, माले गनीमत भी मिल गई, सवाब भी मिल गया, फतह भी मिल गई, कितना कुछ मिल गया। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। दालिकुम ये बात, ये आजमाइश है, ये सारा जो हुआ है। वह अन्नल्लाह मोहिनु कई दिल काफिरीन, ये इसलिए ये बात, और ये इसलिए भी कि अल्लाह ताला कमजोर कर दे मोमिन काफिरों की चाल को। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तो मदद की, ये आजमाइश ऐसी थी जिसमें अल्लाह ने तुम्हारा साथ दिया, और ये आजमाइश इसलिए भी आई, ये जंग इसलिए भी कि अल्लाह ताला मोमिन काफिरों को कमजोर कर दे। मैंने आपको वहन बताया ना, वीकनेस, कमजोरी। देखें वो जब उनकी सारे बड़े बड़े उनके हाल ये थे कि उनके हर घर में मातम था, हर घर में सोग था, इतनी लोग, हालांकि 70 ही उनके मारे गए थे, 70 कैद हुए थे 1000 में से, लेकिन हर एक कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार, किसी का कुछ लगने लगता था। इन तस्तफ्तहु फकद जाअकुमुल फतह। अब ये काफिरों को कहा जा रहा है, अगर तुम फैसला चाहते थे तो आ गया ना फैसला,
कौन सा फैसला? असल में कुफार जो थे, इन्होंने दुआएं की थी। वैसे तो अबू जहल ने की थी, मगर बाकी सारों की भी नीयतें यही थी। अबू जहल की दुआ ये थी कि अल्लाह, वो भी दुआएं जाहिर है अल्लाह से तो मांगते थे कि अल्लाह हम में से जो नाफरमान है और जो रिश्तों को तोड़ने वाला है, आज उसको हलाक कर देना और दूसरे को फतह दे देना। और फिर बाकियों के भी ये थे, और इसके अलावा भी कहा जाता है कि अबू सुफियान ने उनको पैगाम भी भेजा था कि दुआएं करना काबा में। तो इसने, अबू जहल ने रवाना होने से पहले, चलने से पहले गिलाफे काबा को पकड़ के दुआ की थी, अल्लाह इन दो लश्करों में से जो तुझे ज्यादा प्यारा है और इनमें जो ज्यादा तेरे यहाँ इज्जत वाला है और जो ज्यादा बेहतर है, अल्लाह उसको फतह दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसी चीज का जवाब दिया कि अगर तुम फैसला चाहते थे तो फैसला तो आ गया, और अगर तंतहू तुम बाज आ जाओ, फहुआ खैर लकुम, तो वो अच्छा है तुम्हारे लिए। वइन तऊदू, और अगर तुम वापस लौटोगे, बाज आ जाओ किससे? रसूल की मुखालफत से, मुसलमानों को तंग करने से। अगर तुम नहीं बाज आते, फिर वही करोगे, तो फिर तुम्हारे साथ वही होगा। वलन तुगनियान कुम फियतुकुम शैअन वलव कसुरत, तुम्हें तुम्हारा ग्रोह कुछ भी काम नहीं आएगा, चाहे कितनी कसरत हो उसकी। इंसान अपने ग्रोहों पे बड़ा नाज करता है, अपनी जमात के ऊपर उसको बड़ा मान होता है कि जी हम बहुत बड़ी जमात है हमारे साथ और हमारे साथ बड़े लोग हैं, लेकिन फरमाया कोई भी तुम्हें फायदा नहीं देंगे, इतनी बड़ी जमात भी तुम्हें कोई काम नहीं आएगी, चाहे कितनी कसरत तुम्हारे पास हो। मुमिनीन, और बेशक अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है, मोमिनों के साथ है। मोमिन कैसे बनना है? अब तो आपको पता है ना कैसे मोमिन बनना है, क्योंकि अल्लाह ताला मोमिनों के साथ होता है। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यखज़ुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें गलबा नहीं पा सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो क्या होगा? कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारा वाली वारिस नहीं होगा। तो अल्लाह की मदद आपने देख ली ना यहाँ पे कैसे आई है, कि जब अल्लाह ताला मदद करता है तो फिर वहां वहां से मदद आती है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता कि यहां से कोई मेरे कोई चीज मेरे लिए काम वाली बन सकती है, कोई मुझे सपोर्ट मिल सकती है। वो अल्लाह के लश्कर होते हैं जो उसके कब्जे में हैं। तो इसलिए दिलों का बंद जाना, दिल में एक तसल्ली आ जाना, दिल का पुरसकून हो जाना, इत्मीनान हो जाना, कदमों का जम जाना, ये भी अल्लाह की मदद है। हम सिर्फ एक्सटर्नल मदद को देखते हैं ना, वो हमें सिर्फ लगती है कि ये मदद है, बाहर को देखते हैं, बाहर नहीं, आपके दिल के अंदर भी जो इत्मीनान भर दे वो भी अल्लाह ही है और ये उसकी मदद है। तो आप पूरी मदद देखना चाहते हैं तो ये सारी आयतें देख लें कि ये तफसीर है अन्नल्लाह मअल मुमिनीन की, ये अल्लाह मोमिनों का साथ देता कैसे है ये बता। वो फरिश्ते भी उतार देता है, और वहां वहां से मदद फरमाता है जहां पे इंसान सोच भी नहीं सकता। उसमें तो फिजिकली फरिश्ते आ गए और उन्होंने जंग में भी हिस्सा लिया, लेकिन अदरवाइज जैसे मैंने आपको सूरह हामीम सज्दा की आयत बताई कि फरिश्ते उतरते हैं मुसलमानों के, मोमिनों के, उन लोगों के जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और उस पे जम जाते हैं, ऐसी ऐसी तसल्लियां उनको देते हैं, ऐसी ऐसी खुशखबरियां उनको सुनाते हैं कि उनके दिल ढारस पा लेते हैं, कि दिल मुतमईन हो जाते हैं, पुरसकून। तो अल्लाह ताला हमारे साथ अपनी मदद शामिल रखे हमेशा, और हमें मोमिनों में शामिल फरमा दे जो वाकई हकीकी मोमिन है, सच्चे मोमिन है,
अल्लाह ताला उनमें हमें शामिल फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.